मुनि स्थिर बुद्धि वाला है, जो कि विचलित नहीं होता आसक्ति भय क्रोध इनमें। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण हैं, ऐसे परिपूर्ण योगी के क्या लक्षण हैं, तो भगवान अपना उत्तर अर्जुन को देते हुए आज के भी श्लोक में कहते हैं, यह सर्वत्र नाभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र सब स्थितियों में, सब स्थानों में और सब समय। सर्वत्र का अर्थ है ये तीन पहलुओं में, स्थिति स्थान और समय। सर्वत्र अन भी स्नेह, स्नेह किसे कहते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में क्या लिया था, आसक्ति, तो यहां पर भगवान उसे स्नेह ये शब्द दे रहे हैं। अनस्नेह, अनभिस्नेह का अर्थ है कि बिल्कुल भी स्नेह या आसक्ति वो नहीं रखता। कौन नहीं रखता? स्थित प्रज्ञ। तो किसमें अब आसक्ति नहीं रखता या स्नेह नहीं रखता? तत्त प्राप्य, जब उसे प्राप्त होता है क्या, शुभ और अशुभ। चाहे शुभ उसे प्राप्त हो चाहे अशुभ उसे प्राप्त हो, अनभिस्नेह उसमें वो स्नेह नहीं रखता। कैसे? न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि। जब उसे शुभ प्राप्त होता है तो उसका अभिनंदन भी वो नहीं करता। ये नहीं कि शुभ प्राप्त हुआ है तो बस अब दुनिया की परिपूर्णता उसे प्राप्त हो चुकी, नहीं। और जब अशुभ वस्तुएं या स्थितियां उसके जीवन में आती हैं, न द्वेष्टि, वो द्वेष भी नहीं करता उस अशुभ स्थिति से, न अभिनंदन करता है शुभ स्थिति का, न द्वेष करता है अशुभ स्थिति का। और भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञा कहते हैं ज्ञान को, और आगे प्र लगा देने से प्रकृष्ट रूपेण जो ज्ञानी है, विशेष ज्ञानी, वेरी स्पेशल इन वंस नॉलेज, उसे कहते हैं प्रज्ञा। प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित हो जाता है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये है आज के श्लोक का अनुवाद विच्छेदित करते हुए। तो हमने पिछले श्लोक में यह लिया था कि स्थिर मन वाले मुनि के ये लक्षण, सुख दुख आसक्ति भय क्रोध, जो कि बहुत कॉमन है कलयुग में। बोलते हैं कलयुग का ये सब हॉलमार्क है, ये सब बहुत स्पेशल फीचर्स ऑफ कलयुग होता ना, किसी प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स। तो सुख दुख आसक्ति भय क्रोध, ये सब कलयुग के स्पेशल फीचर्स। लेकिन एक पिछले श्लोक में भगवान ने कहा स्थितधीर मुनि वो है जो अविचलित, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बहुत बड़ा किया है फॉन्ट उसका, अविचलित, स्टेडी, अनडिस्टर्ब्ड। मैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट के वो बोर्डिंग का वेट कर रहा था, तो एक स्टूडेंट मेरे बगल में बैठा था और उसके टी शर्ट पर लिखा हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब बिकॉज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। तो इस भौतिक संसार में ये स्थितियां ऐसी हैं कि चाहे आप कुछ भी करो, ये जो समुद्र है ना कलयुग का, वो चाहे इस छोर पर जाओ या उस छोर पर जाओ, समुद्र का पानी खारा ही मिलेगा और बीच में भी। तो चाहे इस छोर उस छोर, बीच में समुद्र का पानी खारा। तो आज के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे पिछले श्लोक से संबंध, जो अभी भी हमने सुन लिया, शुभ तथा अशुभ की व्याख्या शास्त्रों के आधार पर क्या है, विशेष ज्ञान में स्थित होने के लक्षण। अंतिम पंक्ति आज के श्लोक की क्या थी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पिछले श्लोक में विशुद्ध एवं दिव्य चेतना वाले मुनि का अविचलित मन भगवान ने प्रदर्शित कर बताया, और आज के श्लोक में विशेष ज्ञान में स्थित योगी के लक्षण। तो पिछली बार क्या थे ये दोनों, सुख और दुख, और आज हैं शुभ तथा अशुभ। अब देखिए, इस भौतिक संसार में शुभ और अशुभ, इसमें भेद कर पाना विशेष रूप से कलयुग में बहुत कठिन है। जैसे है ना, कई ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिसके अंदर ये एक फ्रेज यूज किया जाता है, गुड न्यूज बैड न्यूज। तो गुड न्यूज बैड न्यूज इस टाइटल को लेकर बहुत से स्टोरीज, आर्टिकल्स, ये सब आजकल मेल्स में आते हैं। तो गुड न्यूज बैड न्यूज, शुभ समाचार अशुभ समाचार क्या है। जैसे कि एक डॉक्टर एक मरीज को बोलता है, उसको एग्जामिन करने के बाद, देर इज गुड न्यूज एंड देर इज बैड न्यूज, देर इज ऑस्पिशियस न्यूज देर इज इनऑस्पिशियस, शुभ समाचार अशुभ समाचार, कौन सा पहले सुनाओ। तो वो सोचता है स्वीट डिश तो लास्ट में खाते हैं ना, मधुरम समर्पित, तो पहले बैड न्यूज सुनाओ भाई। तो ठीक है, बैड न्यूज ये है कि एड्स हो गया तुम, तो बाकी क्या रह गया अभी। तो बैड न्यूज इज यू हैव एड्स। तो गुड न्यूज क्या है फिर, गुड न्यूज अलोंग विथ एड्स यू ऑल्सो हैव अल्जाइमर्स। तो वो क्या होता है, वो कौन सी चिड़िया का नाम है, अल्जाइमर्स डिजीज होती है जिसमें धीरे धीरे आपकी याददाश्त चली जाती है, तो भूल जाओगे आप कि आपको एड्स हुआ है। तो वो गुड न्यूज है। तो यही है इस भौतिक संसार का गुड न्यूज और बैड न्यूज, शुभ और अशुभ। जैसे डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड अल्जाइमर्स, दोनों यही से शुरू होते हैं। तो शुभ और अशुभ, यदि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में इस प्रकार से इसकी व्याख्या की है, शुभ ऑस्पिशियस मीन्स समथिंग विच इज प्लेजेंट एंड बेनिफिशियल, अशुभ इज दैट विच इज अनप्लेजेंट अनबेनिफिशियल। बहुत सिंपल है अभी श्रील प्रभुपाद द्वारा ये जो व्याख्यान दिया हुआ है इन दोनों का। लेकिन फिर हमारे वैदिक शास्त्र ये दो शुभ और अशुभ को लेकर इतने अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोणों से समझाया है कि कैसे हम शुभ और अशुभ में भेद कर सकें और उस ज्ञान में स्थित हो सकें जो कि स्थितधीर मुनीर का ज्ञान है। तो तो हम इसकी शुरुआत करते हैं शुभ तथा अशुभ। अब इसे यदि हमें समझना है तो हमारे उपनिषद कहते हैं, उपनिषद बताते हैं कि शुभ और अशुभ को समझने के लिए आपको समय, देश और स्थिति, टाइम प्लेस सिचुएशन के अनुसार शुभ और अशुभ को समझना हो। तो हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं टाइम का। तो अब ये देखिए, सूर्य प्रकाश एवं वर्षा, और ये दो व्यक्ति हैं, एक है किसान एक है कुंभार। तो कौन सा किसके लिए शुभ है और कौन सा किसके लिए अशुभ है? वर्षा किसान ऊपर देख रहा है, धूप इतनी कड़क है, भूमि पर कुछ नहीं, इतनी वर्षा नहीं हो रही, तो वर्षा के बादल जब किसान को दिखते हैं तो किसान एकदम हर्षोल्लासित हो जाता है, और वही वर्षा के बादल जब कुम्हार देखता है तो सत्यानाश हो, क्योंकि उसे धूप में उसके बर्तन सुखाने होते हैं, तो उसके लिए धूप सबसे शुभ है, किसान के लिए वही सूर्य। अब सूर्य में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? सूर्य तो वही है, अब सूर्य बेचारा क्या करे? तो एक गाली दे रहा है और एक माला पहना रहा है, एक सूर्य नमस्कार कर रहा है, एक पता नहीं क्या कर रहा है। तो यहां पर अब यदि हम समय का प्रभाव लें तो वही एक समय, लेकिन इन दोनों के लिए शुभ और अशुभ की परिभाषा बिल्कुल बदल जाती है। तो हमारे जीवन में भी यदि हम देखें, कई बार हम अपने आप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं, कि जैसे कि मैं बचपन में मेरी तुलना मेरे पिताजी के साथ करता था, बचपन की बुद्धि थी, बाल बुद्धि जिसे बोलते हैं, बालिश बुद्धि, तो मैं पिताजी के साथ तुलना करता था, पिताजी को देखता था ऑफिस से आते हैं और बस नहाया धोया क्लब में गए खेलने के लिए, कोई होमवर्क नहीं कुछ नहीं, तो वो भी 5 बजे आते थे, मैं भी स्कूल से 5 बजे आता था, तो मुझे तो नहा धो के बस होमवर्क करो होमवर्क, अरे तो वो भी तो 5 बजे ही वहां उधर से आए, उनको क्यों छुट्टी और मुझे मुझे क्यों काम। तो वो तुलना में करता था, कब वो दिन आएगा जब मैं पिताजी के जैसे बन जाऊंगा, कभी नहीं बना फिर। तो कि बस छुट्टी छुट्टी, और हो सकता है मेरे पिताजी मुझे देखकर, क्योंकि उनके टेंशन अलग, मुझे नहीं पता था कि उनके क्या टेंशन, क्यों क्लब में जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि उनके टेंशन ये होते होंगे कि अरे एक बॉस से छूट के यहां अभी यहां वापस दूसरे बॉस में नहीं पड़ो। तो उनके टेंशन अलग, वहां पर वो जो भी लोन ले रखा है, और मुझे पता नहीं उनके जो हाई लेवल टेंशन होते हैं। तो वैसे ही हम जब अपने समय को किसी दूसरे के समय के साथ तुलना करते हैं तो ये समझना चाहिए कि वो समय का प्रभाव है, और अभी जो मेरे लिए अशुभ है हो सकता है आगे कुछ समय बाद वो मेरे लिए शुभ ठहराएगा, और वैसे वर्षा जिसे कहते हैं। तो ये उदाहरण हमने देखा समय के दृष्टिकोण से। अच्छा, अब डॉक्टर कितने खुश लग रहे हैं देखो इस चित्र में, है ना? इसलिए कहते हैं कि भगवान को नाराज मत करना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर को नाराज किया तो भगवान के पास भेज देगा। तो अब यहां पर केवल डॉक्टर का चेहरा दिख रहा है, एकदम कितना खुश है डॉक्टर ये, बेचारा मरीज का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो अब बीमारी किसके लिए शुभ किसके लिए अशुभ, हम बोलते हैं ना डॉक्टर को पूछो हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन, वंडरफुल, मतलब क्या है इसका? जैसे मैं अभी मैनचेस्टर में था तो वहां पर मैं एक अपने मित्र से मिला, क्लासमेट, अभी वो वहां पर डॉक्टर है यूके में। तो उसने अपने उसका क्लिनिक खोल रखा है तो वहां पर मुझे बुलाया था, तो बड़ा सारा क्लिनिक है, बहुत बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर बन गया। तो कुछ पेशेंट्स को देख रहा था, मैं वेट कर रहा था, तो मैंने देखा डॉक्टर जैसे पेशेंट्स को देखते हैं, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जैसे यहाँ पर भी, तो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि एक बात बता, ये सभी डॉक्टरों की हैंडराइटिंग ऐसी क्यों होती है, क्या आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मरीज को बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या लिखा है? तो ये तो ठीक है, मैंने मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग कभी समझ में नहीं आती, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सी भाषा लिखी सबसे पहले। तो ये एक मेरे को अचरज रहा, तो मैंने उसको पूछा। और फिर दूसरा अचरज ये कि और कोई नहीं समझ सकता, वो जो केमिस्ट है, वो केमिस्ट है वो समझ जाता है, उसको कैसे समझ जाता है, तुरंत देख के वो निकाल के दे देता है सही दवाई, सही देता होगा। तो उसने मेरे को एक सीक्रेट बताया उसका, तो डॉक्टर ने बताया तो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि डॉक्टरों में और वो जो केमिस्ट होता है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ना वो केमिस्ट पढ़ता है, क्या लिखते हैं हम लोग, मैंने तो इसको लूट लिया अब तू लूट ले। No offense against doctors. I'm repeating as it is, डॉक्टर ने जो कहा। तो शुभ और अशुभ, तो अब शुभ और अशुभ यदि यहां पर हम देखें तो बेचारा वो मरीज तड़प रहा है, लेकिन उसी के बलबूते पर तो किसी और का धंधा पानी चल रहा है। तो यहां पर यदि स्थिति देखी जाए तो शुभ और अशुभ की स्थिति वो हम एक ब्लैंकेट डेफिनेशन नहीं दे सकते कि हाँ यही शुभ है और यही अशुभ स्थिति के अनुसार। तो जो काल चक्र है वो काल चक्र किस प्रकार का है, जैसे कि किसी भी कोई भी बैलगाड़ी का चक्र होता है या किसी गाड़ी का चक्र होता है, तो ये जो इसके क्या बोलते हैं स्पोक्स जो होते हैं वो एक ऊपर होता है कभी और वही फिर नीचे जाता है, जो नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, जो ऊपर आता है फिर नीचे, जैसे पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी। तो काल चक्र में ही ये सारे शुभ अशुभ, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख इत्यादि सब कुछ इस काल चक्र के अंदर भगवान ने फिट किया। तो यदि ये काल चक्र के रूप में है, जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट टाइम का क्या है, टाइम इज लीनियर, वो कहते हैं कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी बस, बट वैदिक कंसेप्ट ऑफ टाइम इज इट इज साइक्लिकल, जो अभी आया है वो जाएगा और जो गया वो आएगा, therefore it is all temporary। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार काल चक्र के रूप में है ऐसे। इसलिए वो जो हमने पिछले हफ्ते वो राजा की स्टोरी ली थी ना, उसको जो बर्थडे गिफ्ट मिला, ऑल थिंग्स मस्ट कम टू अ पास, वेदर इट इज ऑस्पिशियस, वेदर इट इज इनऑस्पिशियस, वेदर इट इज हैप्पी और मिजरेबल वॉट एवर सिचुएशन। तो यह समझना आवश्यक है जब हमारे जीवन में शुभ अशुभ, इसलिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जो भगवान कह रहे हैं कि जो उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है वो ये पहचान लेता है कि मैं इस काल चक्र में जी रहा हूं। तो हमारे जीवन में यदि हमें उस विशेष ज्ञान में अपने आप को स्थित करना है तो हमारा पूरा जीवन काल चक्र के अनुसार हमें देखना होगा। तो एक बार पहले भी हमने ये गोबर की कथा ली थी, तो ये है, श्रील प्रभुपाद ने एक बार उदाहरण दिया था बंगाली में, तो ये एक कॉमन दृश्य किसी गांव का जहां पर गोबर के एक अंडे सुखाए जा रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो इसका एक श्लोक भी है, तो ये क्यों सुखाए जा रहे हैं यहां पर, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, फिर वो जब सूखने के बाद उनको चूल्हे में डालकर जो भी पकाया जा खाना पकाया जाता है उस पर। तो ये एक गोबर जो ऊपर सूख रहा है, वो जो चूल्हे के अंदर का जो गोबर है उनसे दोनों का इनका वार्तालाप चल रहा है अभी। हाँ, तो कल्पना कीजिए ये दो गोबरों का वार्तालाप चल रहा है, कौन से गोबर का, ये जो ऊपर सूख रहा है दीवार पर और वो जो चूल्हे में अभी जल रहा है। तो ये जो दीवार पर सूख रहा है वो बोलता है, क्या तेरा जीवन खत्म हो रहा है, मर रहा है, तो जल रहा है, मैं देख धूप चाप ताप रहा हूं। तो वो जो चूल्हे में जल रहा है अभी, जो अभी खत्म होने वाला है, वो जलते जलते बोलता है, तू जब सूख जाएगा ना तेरी भी हालत इधर ही होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने यह उदाहरण दिया कि बस टाइम इज सेपरेटिंग, कोई अभी धूप ताप रहा है, कोई बेचारा चूल्हे में जल रहा है, लेकिन वही वो जो पूरा सूखने के बाद जाएगा कहां, उसका भी वही दृष्टिकोण। तो वही एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिया करते थे कि जो कसाई खाने में बकरों को लगाया जाता है तो उनको बहुत खिलाया जाता है, वो लोग लाइन में खा रहे हैं, घास खा रहे हैं और पता नहीं एक एक कर कर ऊपर सूली पे चढ़ाकर कटाए जा रहे हैं वो लोग। तो उसको बस उसके घास में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे घास मिल रहा है ना, बाकी आगे क्या होगा, वो भी बोलते हैं ना आगे क्या होगा किसने देखा है। तो ये जो जिसका फिलॉसफी होता है ना, आगे किसने देखा है, वो बकरी का फिलॉसफी है, बस अभी खाते जाओ आगे किसने देखा है, नहीं वो देख रहा है ना तुमको, कौन, वो कसाई हाथ में वो लेकर वो देख रहा है, और वो देख रहा है कौन सा ज्यादा खा रहा है उसको पहले काटता है, कौन सा ज्यादा मोटा है, तो जो जितना खाता है पहले मरता है। तो ये गोबर की कथा। तो मुझे बहुत मुश्किल से ये चित्र मिला, क्षमा करना, ये मैं कुछ 3 साल पहले इटली गया था, तो इटली रोम में ये एक वहां पर चर्च है सेंटा मारिया, तो वहां पर ये हम लोग को जो भी वो गाइड था वहां का लेकर गया, बोला ये देखना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं बड़ा डर गया, क्या ये सब, ये आप जो देख रहे हैं यहां पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑसुअरी, यहां पर उन्होंने म्यूजियम बनाया था, एक क्या बोलते प्रदर्शनी एग्जीबिशन, किसका, उस चर्च के जितने मॉन्क्स मरे एक सेंचुरी दो सेंचुरी पहले, जितने मॉन्क्स मरे उनकी हड्डियों का म्यूजियम बनाए। और यहां पर और कुछ नहीं, वो जो उनके मॉन्क्स हैं उन सब की हड्डियां हैं उसमें प्रदर्शनी लगाई हुई है, सब कुछ उसी से बनाया हुआ है। तो आपको लग रहा है मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जब मैंने वो पूरा एग्जीबिशन देखा तो तो उसके एंड में एक बहुत सुंदर एक उनका ये एक प्रकार का प्रोवर्ब लिखा हुआ था, स्लोगन जो भी कुछ कहें, और वो ये था कि ये जो क्या बोलते हैं कंकाल, क्या बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन तो पता है मुझे, कंकाल बोलते हैं ना स्केलेटन, तो ये जो सब वहां पर खड़े लटके जो भी, तो ये जो भी वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं ना देखने के लिए, उनको बोल रहे हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ था एज इफ दे आर स्पीकिंग टू ऑल द टूरिस्ट, तो अलग अलग टूरिस्ट कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हैं देख रहे हैं, बाप रे बोले ये तो हमारे लिए जगह नहीं है अच्छी, तो ऊपर ये लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़िए, वॉट यू आर नाउ वंस वी यूज टू बी एंड वॉट वी आर नाउ सून यू शैल बी। तो तुरंत ये पढ़ने के बाद सब थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर बाहर जाते हैं। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है कि जो काल चक्र है इस संसार का, ये इसी प्रकार से कार्य करता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हमने हमारे संडे के भागवतम क्लास में उदाहरण लिया था सांप सीढ़ी का खेल, तो ये सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ये भी उसी प्रकार का है, क्या वो डाइस फेंको फिर आपको सीढ़ी कहां से कहां पहुंचाती है, और फिर आगे कोई सांप खड़ा रहता है डंक मारने के लिए, वो फिर कहां से कहां फेंकता है, तो सीढ़ी कहां से कहां पहुंचाती है वो कहां से कहां फेंकता है। तो इस भौतिक संसार में जैसे पिछली बार हमने कौन सा गेम लिया था, सी सॉ, यू सॉ यू सी देन यू सी यू सॉ योर सिचुएशन, यू सी योर सिचुएशन देन यू सॉ इट, चली गई वो सिचुएशन। तो वैसे ही ये सांप सीढ़ी का खेल भी हमारे जीवन में, हम लोग बचपन में बहुत आनंद लेके खेलते थे, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा ये खेल खाली बचपन में खेले हमने, अभी तक चल रहा है ये मरते दम तक सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा, कोई हमको सीढ़ी में ऊपर पहुंचा रहा है और जिसने ऊपर पहुंचा है वही नीचे खींचता है। डाइस, हमने वो उदाहरण दिया था, वो जो डाइस आपको आगे ऊपर ले जाता है वही डाइस सांप के मुंह में भी फेंकता है आपको। तो जो लोग आपका बहुत वाह वाह गुणगान ये कर रहे हैं वही लोग आपको सूली पे भी चढ़ाएंगे। ये इस जीवन और इस संसार का नियम भगवान ने काल चक्र के अंदर इस प्रकार से बनाया हुआ। तो ये भी हमने एक उदाहरण लिया था, एक भिखारी का साक्षात्कार। तो ये नीति शास्त्र से कथा कि एक बहुत बड़ा व्यापारी, सब कुछ धंधा लूट गया उसका, पैसा लूट गया, रास्ते का भिखारी बन गया। रास्ते का भिखारी बन गया तो उसके बगल में एक और भिखारी। अब देखिए, जो भिखारी होते हैं वो लोग अपना स्पॉट बहुत एकदम स्ट्रेटेजिक स्पॉट ढूंढते हैं। मुझे याद है हम लोग बहुत साल पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के लिए बंबई में अलग अलग जगहों पर अपना भगवद गीता का स्टॉल लगाते थे, तो मैं और दो ब्रह्मचारी हम लोग गए थे मालाड बंबई में। तो वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर और सैटरडे का दिन, इतनी भीड़, तो हमने सोचा मंदिर के प्रांगण में स्टॉल लगाते हैं भगवद गीता का, ना बिकेगा तो अंदर लगाना है तो कोई ऐसा स्पॉट होना चाहिए कि हम लोग क्राउड को डिस्टर्ब ना करें। तो मैं देखने गया अंदर तो देखा सब जगह पे बहुत भीड़ थी, एक कोने में थोड़ी जगह खाली थी, वहां एक भिखारी कटोरा लेके बैठा था। तो मैं गया, मैंने उसको पूछा कि ये जगह खाली है, उसने देखा हाँ बैठो कटोरा वटोरा नहीं लाए, लाएंगे 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 तो ये व्यापारी जो अभी भिखारी बन गया, तो उसके बगल में बैठा हुआ भिखारी पूछता है कैसे आना हुआ, क्या आपकी स्टोरी क्या है बताओ स्टोरी, तो अपनी स्टोरी और जो भी कुछ बता रहा था, क्या फायदा हुआ, इतना पैसा कमाया सब लुट गया, ले देखे मेरे बगल में बैठे हो कटोरा लेके वो भी खा लिए। तो ये जब उसको पता पूछा कि क्या फायदा हुआ, तो ये जो व्यापारी अब भिखारी बन गया है ये बताता है कि मुझे क्या फायदा हुआ। श्लोक बोलता है, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से पढ़िएगा इस श्लोक। तो कहता है भो दरिद्र नमोस्तुभ्यम, कि जो दरिद्रता का देवता है मैं पहले उसको नमस्कार करता हूं। दी डेमिगॉड इन चार्ज ऑफ पॉवर्टी, दरिद्रता, नमस्तुभ्यम, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम, क्यों, सिद्धोंतव अदर्शनात्, उसने ऐसी सिद्धि मुझे दे दी है कि मेरे ही सारे जान पहचान के लोग मेरे सामने से गुजर रहे हैं, कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा है, इनविजिबल हो गया मैं। पश्यामि अहम जगत सर्वम, मैं सबको देख पा रहा हूं, ये वही दोस्त मेरा, वही पड़ोसी मेरा, वही रिश्तेदार मेरे, वही मित्र, वही समाज, मैं सबको देख पा रहा हूं। नमाम पश्यति कश्चन, लेकिन ये लोग कोई मुझे देख नहीं रहे, जैसे कि आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, एज इफ आई हैव बिकम इनविजिबल अदर्शनात्। तो मैं ये दरिद्रता के देवता को मेरा नमस्कार दे रहा हूं कि जिसने मुझे ऐसा फायदा करा कर दिया है कि यहां पर किसी के पास ऐसी सिद्धि नहीं है, बिकम इनविजिबल। तो अब उसका व्यापारी से भिखारी बनना शुभ था या अशुभ, यह आपका होमवर्क है। तो अब यदि हम सिचुएशंस, प्लेसेस, प्लेसेस को लें, अभी टाइम सिचुएशन, तो ये एक बहुत ही आलीशान इमारत जो आपको दिख रही है, रहना पसंद करेंगे ऐसी आलीशान इमारत में? हाँ, एक ऐसा घर हो कितना चमकदार कांच का बना हुआ। बाय द वे, ये स्पेन का जेल है, हाँ, अब रहना पसंद करेंगे? थोड़ा अंदर का टूर लेते हैं, फिर आप डिसाइड करना। ये यहां से फ्रंट व्यू देखो, एलिवेशन कितना अच्छा है, साइड प्रोफाइल इतना अच्छा है, एलिवेशन कितना अच्छा। तो किसी को आप जो भी अगर बताओगे भी कि ना आजकल मैं कहाँ रह रहा हूं, तो फोटो भी दिखा सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव रहेगा। तो अंदर का टूर, अभी थोड़ा लग रहा है सलाखे हैं सामने, लेकिन व्यू देखो बाहर कितना अच्छा है। ये आपके लिए स्पेशल टीवी और सब अरेंजमेंट्स हैं। ये अंदर का सेल है, ये जेल, जेल के अंदर का जो सेल होता है वो है। फिर ये उसके अंदर की लॉबीज वगैरह, ये देखो उसका वेटिंग रूम, अगर कोई मिलने आए तो उसको भी लगे कि हाँ यार स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की जगह पे रह रहा है। अब देखो आपके मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए सारे साधन है यहाँ पे। यहां तक कि बाहर जाकर अगर किसी को और पीटना वगैरह है तो अच्छी से वर्जिश यहां पर करके फिर बाहर निकल सकते हैं। तो ये है स्पेनिश जेल, और ये है हमारे भारतीय जेल। तो अब यदि इन कैदियों को पूछो कि क्या आप उस जेल में जाना पसंद करोगे, उनके लिए तो हमारा सौभाग्य होगा, पता नहीं कैसे पुण्य हमने, पता नहीं उन्होंने कैसे पुण्य किए हैं, कैदी हम भी, कैदी वो भी, अरे हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि हमको ऐसे जेल में, और उन्होंने कैसा कौन सा पाप में कौन सा पुण्य किया कि उनको उस प्रकार का मिला जेल। जैसे कि ये स्कूल बस, जापान की एक स्कूल बस है, इसका अंदर का व्यू देखिए, सबके लिए ये क्या बोलते हैं, पीसी स्क्रीन, ये बस के अंदर का फैसिलिटी है, ये सब कुछ, ये जापान की एक साधारण स्कूल बस है। तो बहुत क्लोज एसोसिएशन इंडिया में सबका होता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि चाहे वो कोई भी प्रकार का स्थान हो, लेकिन स्थान बदलने से किसी के कर्म का परिणाम नहीं बदलता। जो शुभ और अशुभ का जो स्वरूप है, वो स्थान बदलने से उसको जो उस प्रकार का इंटेंसिटी मिलना है कर्मों के अनुसार, वो मिलके ही रहेगा। चाहे इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से उसके जीवन में, अगर वो आर्टिफिशियली उन तकलीफों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो किसी न किसी तरीके से ये न के न प्रकारेण वो तकलीफ उसे आनी ही है। तो इसलिए एक जो स्थित प्रज्ञ है या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, वो जानता है कि मैं जो मेरे लिए आना है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, और जो मुझे नहीं मिलना उसके पीछे मैं क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि वो चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक और कथा स्टोरी, एक स्वीपर, जमादार जिसे बोलते हैं, झाड़ू मारने वाला, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सिएटल अमेरिका, वहां पर एक स्वीपर की नौकरी के लिए उसने अपना क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डाला। तो उसका इंटरव्यू हुआ, क्योंकि उधर झाड़ू वाले का भी इंटरव्यू होता है, माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पूछा कि भाई तुम्हारा ईमेल क्या है। बोला ईमेल ईमेल नहीं, मेरा कुछ ईमेल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना ईमेल नहीं है, बाहर जाओ। निकाल दिया बाहर। तो ये व्यक्ति जब बाहर निकाला गया तो ये सब्जी मंडी उसके सामने उसको दिखी। तो सब्जी मंडी में जो बचे हुए टमाटर, जो उस दिन के नहीं बिके हुए टमाटर, वो इसको रोज मिलते गए $10 में इसे मिलते गए। तो उसने क्या किया कि वो बचे हुए जो टमाटर, उसका उसने प्यूरी बनाया और वो पिज्जा हट को बेचना शुरू किया उसने। तो पिज्जा हट को इसका प्यूरी इतना अच्छा लगा, क्योंकि सड़े गले टमाटर थे, तो लोगों को, तो इंसानों को तो पता लगता नहीं, उनको वो ज्यादा टेस्टी लगते। तो वो इससे ही मंगाने लगे, तू कहां से लाता है ऐसा प्यूरी, कभी हम लोग ने ऐसा टेस्टी फ्रेग्रेंस ही नहीं आया। तो वो बार बार जाके वहां से, तो ऐसे इसने अपना बिजनेस चालू किया सड़े गले टमाटरों से। बिजनेस चालू किया, $10, $100, $1,000, $10,000 इसने अपनी कंपनी खोल ली, पूरे टमाटर क्या टमाटो प्यूरी पिज्जा हट को देने की इसने अपनी कंपनी खोल ली, बहुत इतना सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में फिर इसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि कैसे आपने ये सब कुछ किया, सारे जो हमारे ग्राहक हैं इस टेलीविजन शो के, वो सब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका ईमेल एड्रेस देंगे। नहीं, मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं। बिना ईमेल एड्रेस के इस संसार में आजकल अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो उसको जब पूछा, आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, इवन विदाउट ईमेल यू बिकेम सच अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, व्हाट टू स्पीक इफ यू हैड एन ईमेल। तो उसने कहा, आई नो, इफ आई हैड एन ईमेल आई वुड बिकम अ स्वीपर इन माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए, इसके पास एक ईमेल आईडी नहीं था तो वो इसके लिए शुभ साबित हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी कल से सब अपना अकाउंट सब डिलीट कर दो तो वो हो जाएगा, नहीं। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब विशेष ज्ञान में स्थित होने के लक्षण, शुभ और अशुभ। सो कृष्णा इज सेइंग दैट व्हेन ऑस्पिशियसनेस कम्स, अस्तित्व प्रज्ञ और मैन इन परफेक्ट नॉलेज नोज ही नीदर प्रेजेस नॉर क्रिटिसाइजेस, दैट इज बीइंग इक्विपॉइज्ड, नॉट दैट ही स्टोन हार्टेड बट ही इज सेल्फ रियलाइज्ड, दैट इज अ पॉजिटिव वे, ही इज सेल्फ रियलाइज्ड, ही नोज द ट्रुथ ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में ये एक दंपति की कहानी है, रंका और बंका। तो ये ऐसे गांव में रहा करते थे जहां पर इनकी ऐसी प्रसिद्धि थी कि हालांकि ये गृहस्थ आश्रम में, लेकिन बिल्कुल विरक्त, कोई आसक्ति नहीं, कोई जैसे अनभिस्नेह कहा गया उस प्रकार का जीवन। तो पति का नाम था रंका, पत्नी का नाम था बंका। तो वहां के कुछ गांव वाले सोचने लगे कि ये लोग जो इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं अपनी विरक्ति के कारण, अपने वैराग्य के कारण, तो चलो इनकी परीक्षा ली जाए कि क्या सचमुच में इतने विरक्त हैं ये। तो इन गांव वालों ने किया क्या कि रोज ये मंदिर जाया करते थे, तो मंदिर के रास्ते पर एक पेड़ के नीचे हीरे जवाहरात सोने ये सब कुछ रख दिए, देखने के लिए कि ये हीरे जवाहरात सोने को जब गोल्ड उसको जब देखेगा ये लोग दोनों तो क्या इनके अंदर प्रतिक्रिया होगी, है ना। कई बार होता है ना, आप किधर रास्ते से चल रहे हो और अचानक रास्ते में आपको पेपर पर गांधी जी दिखे, तो तुरंत दो मिनट के लिए आपको लगता है कहीं असली तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से इनकी परीक्षा ये लोग करने वाले थे, तो रास्ते में ये सब हीरे जवाहरात सोने वगैरह रख दिए। तो हुआ क्या कि जो पति रंका वो आगे चल रहे थे, तो उन्होंने देख लिया, तो उनको लगा कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर मेरी पत्नी ने इसे देख लिया, हो सकता है वो ऐसी नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है उसके मन में कुछ लालसा जागृत हो जाए, और अगर उसके मन में इस सोने के प्रति लालसा जागृत हो गई तो हमारा जो खुशहाल गृहस्थ जीवन है वो तहस नहस हो जाएगा। तो ये क्या करने लगा कि उसे ढकने लगा, बोले इसको मैं ढक देता हूं ताकि वो देखे नहीं। तो मिट्टी इकट्ठा कर ढकने लगा, तो इतना था और मिट्टी थोड़ी कम थी, तो इसको समय लग रहा था तब तक ये बंका पत्नी पीछे जा गई, तो वो अपने पति को देख लिया ये करते हुए। तो देखिए अब वो पत्नी क्या बोलती है, पत्नी रंका से बोलती है मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। ये उसका साक्षात्कार था कि उसे वो सोना हीरे जवाहरात सब दिख रहे थे लेकिन उसके लिए वो सब मिट्टी से ही आए और मिट्टी में ही जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये शरीर भी, चाहे इसके ऊपर हम कितना भी सोना लाद लें, लेकिन जो हमने देखा कंकाल जो बन जाएगा, उस पर आप कितना भी फिर सोना चढ़ाओ कोई सुंदर दिखने नहीं वाला। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय की एक कथा जिसमें जो कि उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो शुभ और लाभ, जैसे कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि शुभ से लाभ होगा और लाभ यदि है तो वो सबसे शुभ स्थिति। कौन सा लाभ? पैसों का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ, नाम प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें। तो कुछ उदाहरण है, जैसे कि रामायण में भरत का उदाहरण है। भरत ने राज्य प्राप्ति का कोई अभिनंदन नहीं किया, भरत को एक दृष्टिकोण से राज्य मिल गया था क्योंकि वो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी मिल गया उनकी माता कैकेयी के वजह से। प्रभु श्री राम सब वो सीता लक्ष्मण वो गए वनवास 14 वर्ष के लिए, और यहां पर अब अयोध्या को संभालने वाला कोई है नहीं, दशरथ उनकी मृत्यु हो गई। तो हाँ, अयोध्या का राज प्रभु श्री राम ने दिया भरत को, लेकिन रामायण में बताया गया है कि भरत की प्रतिक्रिया क्या थी, जैसे कि आज के श्लोक में बिल्कुल भी उन्हें कोई अंदर अभिनंदन नहीं हुआ, इतना तनिक मात्र भी उनके मन में खुशी नहीं। कई बार होता है ना, हम बाहर से बोल देते हैं क्या मैं तो क्या आप मुझे दे रहे हैं, मैं थोड़ी लायक हूं इसके, मन में बोलते हैं सही काम कर रहे हैं आप, अभी अकल ठिकाने आई। बाहर से हम बोलते हैं मैं तो इसके लायक नहीं, क्यों आप ये सब मेरे को क्या है। तो भरत इनके अंदर इस प्रकार की धारणा नहीं थी, इसलिए रामायण में वर्णन है। देखिए हमारे ग्रंथ ह्यूमन बिहेवियर को कितने सेंसिटिवली परखते हैं। तो जब प्रभु श्री राम रावण को मारने के पश्चात अब उनका 14 वर्ष पूरा हुआ, अब वो लौट रहे थे, तो भरत वो अयोध्या का पूरा राज्य संभालते थे, मैनेजमेंट पूरा करते थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट नहीं लिया, वो राजा का पोस्ट नहीं लिया। सिंहासन पर किसको बिठाया? पादुका, प्रभु श्री राम की पादुका को बिठाया, लेकिन सेवा पूरी की उन्होंने। भरत ने रहते थे वो नंदीग्राम में, और केवल वो गोमूत्र में जौ को भिगोकर केवल वही खाते थे वो। तो ये भरत नंदीग्राम में रह रहे हैं, और प्रभु श्री राम अब हनुमान जी को भेजते हैं, और हनुमान जी को भेजते हैं इसलिए कि हनुमान जी जाकर, मैं यहां पर रुका हूं, जाकर भरत को यह समाचार दो मेरा 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब मैं लौट रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब यह समाचार तुम सुना रहे होगे तो भरत के चेहरे को देखना, यदि भरत के चेहरे पर थोड़ी भी नाराजगी या डिसअपॉइंटमेंट दिखे, ना खुशी मेरे आने की, तो मुझे तुरंत बता देना, मैं नहीं आऊंगा। इफ यू फाइंड ऑन हिज फेस इवन स्लाइट डिसप्लेजर ऑफ माई रिटर्निंग बैक, व्हाई? बिकॉज नाउ आई विल बी रूलिंग एज अ किंग, यू लेट मी नो। तो हनुमान जी ने जब ये समाचार सुनाया भरत को, तो भरत के चेहरे पर उल्टा इतना उल्लास, जो उनकी 14 वर्ष से जो, और उन्होंने क्या प्रण लिया था, उन्होंने ये प्रण लिया था कि 14 वर्ष में अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई प्रभु श्री राम, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा आपके आने में, और उन्होंने ये जो बोला था वो कर दिखाया। तो भरत ये उदाहरण है कि जब शुभ उनके साथ हुआ, जो भी बाहरी रूप से, वो उसका अभिनंदन नहीं कर रहे थे। फिर पृथु महाराज ने राज्याभिषेक का कोई अभिनंदन नहीं किया। ये चतुर्थ स्कंध में पृथु महाराज की कथा है कि पृथु महाराज जब वो अवतरित हुए, तो उस समय राज्य में कोई राजा नहीं था। वेण, जो कि एक बहुत खूंखार प्रकार का डकैत राजा था, उसको ब्राह्मणों ने हुंकार कर उसकी हत्या कर दी, और फिर पृथु महाराज का जन्म हुआ। तो जैसे ही पृथु महाराज का जन्म हुआ, तो सभी पृथु महाराज को देखते ही पृथु महाराज का गुणगान करें, तो पृथु महाराज कहते रुको रुको रुको, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, किस बात का मेरा गुणगान तुम कर रहे हो। जैसे है ना, एक गांव में एक व्यक्ति था सरगल सिंह, ये ज्यादा कुछ गांव में कुछ करता नहीं था, बस खाली गांव में इसका नाम था, अच्छा नाम सरगल सिंह करके नाम। तो एक बार हुआ क्या कि जो गांव का बड़ा कुआं था, उसमें गांव की एक बकरी गिर गई, वो किसी को तैरना मैरना आता नहीं, सब देख रहे बकरी अंदर, बकरी कर रही है अंदर मैं, कोई उसको बचा नहीं पा रहा। अचानक सरगल सिंह कूद जाता है,
बकरी को बचा के बाहर लाता है, सभी अरे सरगल सिंह ने बचा लिया, और सब में से सरगल सिंह, तो सभी सरगल सिंह का गुणगान करें, सरगल सिंह को बिठाया, माला पहना रहे हैं, सरगल सिंह सरगल पूछते हैं, सरगल सिंह कैसे तुमको कैसे तैरना वैरना आता, तुमने कैसे किया है, कभी तो तू कुछ करता नहीं, कभी दिखता भी नहीं क्या आज? तो बोलता है वो तो सब ठीक है, मुझे बताओ धक्का किसने मारा मुझे। तो प्रीतु महाराज भी ये बोल रहे हैं कि तुम लोग इतना जो गुणगान किए, मैंने किया क्या अभी तक, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो जो भी उनको वो मिल रहा था, नाम प्रतिष्ठा मिल रही थी, बिल्कुल भी वो उससे प्रभावित नहीं हुए। अब अशुभ जब किसी के जीवन में आता है तो अक्सर वो व्यक्ति उस अशुभ स्थिति, उस अशुभ व्यक्ति, जो भी स्थान जगत उस सब का तिरस्कार करना शुरू करता है। तो इसमें परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया गया है कि परीक्षित महाराज जो कि इस पूरी पृथ्वी के राजा, उनको एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने शाप दिया, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए तक्षक के डंक से। तो परीक्षित महाराज उल्टा, ये सारे उदाहरण है, अब परीक्षित महाराज ने उसे एक शाप नहीं, एक वरदान के रूप में स्वीकार किया, जिसके वजह से श्रीमद् भागवत वो सुने और जिनके वजह से हमें श्रीमद् भागवत मिला। तो परीक्षित महाराज बिल्कुल उसका न तो प्रतिकार किए न उसका तिरस्कार किए, ये है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रीतु महाराज फिर इनका उदाहरण है कि प्रीतु महाराज अब राजा बन चुके और वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए, प्रजा की सुख शांति के लिए, और 100 अश्वमेध यज्ञ का खिताब वो रिकॉर्ड केवल इंद्र ने हासिल किया था। तो इंद्र, इनको जब पता लगा कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये पृथु, तो इंद्र अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र कर कर वो घोड़ा छीन लेना, ढोंगी साधु बनकर क्या कर लेना। तो पृथु महाराज को जब पता लगा कि ये मेरे साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो पृथु महाराज भगवान के समक्ष गए और भगवान विष्णु ने पृथु महाराज से कहा, नहीं, इंद्र को वो खिताब अपने पास रखने दो। कौन सा खिताब? 100 अश्वमेध यज्ञ करने का, क्योंकि ये जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो इसको मान सम्मान मिल रहा है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसे लग रहा है कि उससे उसे बहुत सुख शांति प्राप्त होगी, लेकिन वो जो नाम प्रतिष्ठा है वो उसकी सुख समृद्धि नहीं है, और इसमें तुम यदि दोगे इसे तो तुम्हारी सुख समृद्धि इसमें लिखी हुई है। तो भगवान विष्णु ने ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पृथु महाराज इनको दिया। और बलि महाराज का उदाहरण, जिनका संपूर्ण राज्य, सब कुछ, सारी संपत्ति वामन देव इन्होंने छीन ली, लेकिन बलि महाराज के मन में संतुष्टि क्या थी कि मैंने साक्षात भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित किया। इसलिए जो नवधा भक्ति है उसमें अंतिम जो अंग है वो कौन सा है? आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन के आचार्य हैं सब कुछ सर्वस्व अपना दे देना, वो हैं बलि महाराज। और ये उदाहरण है नारद मुनि, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, और दक्ष प्रजापति इतने क्रोधित हुए नारद मुनि से कि नारद मुनि को ऐसी ऐसी गालियां सुनाई हैं, श्रीमद् भागवत आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको उस समय भी ऐसी ऐसी गालियां बोला करते थे। दक्ष प्रजापति ऐसी ऐसी गालियां नारद मुनि को सुना रहे, और नारद मुनि को शाप दे दिया कि एक जगह टिक नहीं पाओगे तुम। तो नारद मुनि के लिए तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि हाँ, एक जगह में टिक नहीं पाऊंगा मतलब सब जगह में घूमता रहूंगा, प्रचार करता रहूंगा। इसलिए नारद मुनि हर समय अपनी वीणा बजाते हुए प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जब वो इस्कॉन की स्थापना की, और श्रील प्रभुपाद को इतने सारे ये विदेशी नव युवक युवतियां ज्वाइन किए, तो इनके भी माता पिता आकर कंप्लेन करते थे ये वो। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई हैव इनहेरिटेड द कर्स ऑफ नारद मुनि अपॉन मी, therefore I cannot stay in one temple more than 3 days। इसलिए ये इस्कॉन मंदिर से वो इस्कॉन मंदिर, यहां वहां इस्कॉन से उस्कॉन, प्रीचिंग करते हुए।
Srila Prabhupada. Only that was a blessing in disguise, just like Narad Muni had the blessing in disguise. Aur ant mein sakshat purna purushottam Bhagwan Shri Ram apne udharan se sthapit kiye ki dekhiye shubh aur ashubh. Kai baar log poochte hain ki kya jyotish shastra par vishwas karna chahiye, kya wo sahi mein kaam karta hai ya nahi karta, ya vastu shastra ye shastra wo shastra. To प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक का दिन चुना था वशिष्ठ मुनि ने, सोचो वशिष्ठ मुनि ने चुना था कि ये दिन शुभ है आपके राज्याभिषेक के लिए. और क्या हुआ उस दिन? वशिष्ठ मुनि जैसे ज्योतिषी कोई हो सकता है, तो उन्होंने सब कैलकुलेशन कर जो इनके लिए शुभ घड़ी मुहूर्त निकाला, उस मुहूर्त में तो वनवास मिला इनको. तो बोलेंगे ये किस प्रकार का मुहूर्त आपने निकाला. तो क्या रामचंद्र जी का वनवास जाना अशुभ था या रामचंद्र जी का राजा बनना शुभ था उस समय? क्या कहोगे? यदि वो वनवास नहीं जाते तो क्या नासिक होता? यदि नासिक नहीं होता तो क्या यहां पर अपना इस्कॉन का मंदिर होता? है ना? मंदिर नहीं होता तो क्या आज का गीतामृत कार्यक्रम होता? नहीं होता. तो आज हम गीतामृत ये सुन रहे हैं प्रभु श्री राम की कृपा से. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय. और कैकई को जाके रामचंद्र जी कहते हैं, वो धन्यवाद देते हैं कैकई को, कहते हैं कि इस पूरे अयोध्या में यदि कोई मेरा हित चिंतक है तो हे कैकई माते आप हो. श्री राम कहते कि मेरा अभी अभी सीता से विवाह हुआ और मैं सोच रहा था मुझे ये राजा बना रहे हैं, तो अभी अभी मेरा विवाह हुआ है तो कोई समय नहीं मिलेगा मुझे मेरी पत्नी के साथ बिताने का. आपने ऐसा अरेंजमेंट किया कि अब 14 साल कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई यहां के झंझट नहीं है राज्य के, 14 साल पिकनिक. और कौशल्या से जब वो मिलने गए तो कौशल्या को पहले पता चल चुका था. तो प्रभु श्री राम कौशल्या के आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हो? अरे मुझे वन का राजा बनाए कैकई ने. ये देखो ये उनका दृष्टिकोण था, मुझे वन का राजा बनाया है. और वो कहते हैं कौशल्या को कि मैं आपको भी बोलता हूं कि आपसे ज्यादा मेरे हित चिंतक कैकई हैं. कौशल्या को बोलते हैं प्रभु श्री राम, क्यों? क्योंकि मुझे कैकई ऐसी जगहों पर भेज रही हैं जहां पर मुझे केवल साधुओं का संग मिलने वाला है. यहां पर तो केवल मंत्री राजनीतिक इनका सब संग मिलता अयोध्या में, मुझे ऐसे ऐसे जगहों पर ये भेज रही जहां पर केवल साधुओं का संग मिलेगा, जहां पर केवल हरि कथा सुनने मिलेगी और हरि नाम लेने मिलेगा. इससे ज्यादा सौभाग्य और किसका हो सकता है? और यदि कोई साधु संग और हरि नाम और हरि कथा का प्रयोजन कराकर दे, उससे ज्यादा हित चिंतक किसी का कौन हो सकता है? तो तिरस्कार तो छोड़ दीजिए, यहां पर प्रभु श्री राम तो कैकई को नमस्कार कर रहे हैं. देखो यहां पर तिरस्कार से नमस्कार, तो ये बहुत ऊंची स्थिति है. वो अभी हम लोग आज वो सेकंड चैप्टर पे ही है अभी तक. तो सेकंड चैप्टर पे खाली भगवान ये बता रहे हैं कि जो उस दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, चाहे अशुभ या शुभ, इन सारी स्थितियों को वो जानता है कि वो अस्थाई है इस भौतिक संसार की तरह. इसलिए न तो वो लालायित होता है शुभ स्थिति से, न वो अपने आप में कोई द्वेष पैदा करता है किसी अशुभ स्थिति को लेकर. सो दैट इज द स्टेज भगवान कहते हैं ऑफ अ इक्विपॉइज्ड अस्तित्व प्रज्ञ. और अब अगले श्लोक में भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बताएंगे, एक कछुए का उदाहरण दे रहे हैं कि कछुआ कैसे अपने आप को स्थिति के अनुसार ढालता है. तो एक स्थित प्रज्ञ का ये एक और लक्षण है कि वो अपने इंद्रियों को इस भौतिक संसार में स्थिति के अनुसार कैसे उपयोग में लेता है और कैसे उपयोग में नहीं लेता। और यदि इसे आपको कछुए का उदाहरण सुनना है तो ठीक इसी समय अगले बुधवार को आप हाजिर हो जाइएगा यहां इसी मंदिर में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
जी एक प्रश्न है।
हाँ
कि जैसे हम लोग अर्जुन का उदाहरण बताते हैं कि कैसे उनके जब 5 बच्चे मारे गए तो अर्जुन रोए, और हम लोग बोलते हैं कि एक डिवोटी का जो हृदय है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए वो नेचुरल है, भले ही वो आसक्ति और उस फ्रेम में हम लोग नहीं बिठा सकते। तो जैसे ही आपने अभी बोला कि अशुभ और शुभ के बारे में, विशेष रूप से लास्ट का जो पॉइंट है जिसमें हम लोग अभिनंदन और तिरस्कार इन दोनों चीजों को कितना न्यूट्रली लेना चाहिए, मगर इवन फिलोसॉफिकली इंटेलेक्चुअली वो कन्विंस होकर भी जब जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, विशेष रूप से अभिनंदन तो छोड़ दीजिए, मगर जब तिरस्कार या फेलियर में सिंपल टर्म में बोलूंगा तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे एक साधक के रूप में हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग लेकर उस फेलियर को भी
अर्जुन का उदाहरण प्रभुपाद भी देते हैं कि जब अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन उसका शोक करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद होते हैं। तो अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो उदाहरण इन दोनों का दिया गया है, अर्जुन का और द्रोणाचार्य का। अर्जुन का पुत्र जो आपने बोला, अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई अर्जुन ने भी शोक किया, और द्रोणाचार्य के पुत्र धृष्टद्युम्न जब उनके मृत्यु का समाचार द्रोणाचार्य को सुनाया गया, अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार जब द्रोणाचार्य को सुनाया गया तो द्रोणाचार्य का क्या रिएक्शन था? छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया। तो एक बार राधानाथ महाराज भी मुझे ये दो उदाहरण दे रहे थे। When upheavals happen in our life, many times we go into the द्रोणाचार्य mode. सब छोड़ डालना, सारे हथियार छोड़ देना। महाराज बोले, no, that is not what a devotee should be. A devotee should be like Arjun. हाँ, emotions हैं, प्रभुपाद ने कहा, a devotee has emotions. He feels bad, but he doesn't give up his service for Krishna. तो यदि वो अपनी सेवा छोड़ रहा है भगवान की, तब फिर वो जो आज का श्लोक है उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो अर्जुन ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, हां उसने शोक किया, और भगवान कहते हैं एज अ डिवोटी इमोशंस आर देयर, ही फेल्ट बैड, ही लैमेंटेड एंड बट लेटर ऑन ही पिक्ड अप हिज गांडीव एंड फॉट। द सेम अर्जुन बिफोर हियरिंग द भगवद गीता, no one had died and he was not able to lift the gandiva. कोई मरा ही नहीं था अभी तक, सब जीवित हैं और खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गांडीव नहीं उठा पा रहे, क्योंकि वो अंदर से जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, यही मैंने आज कहा कि एक स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति नहीं है जो हार्टलेस हो, स्टोन हार्टेड हो या हार्टलेस हो। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जिसके अंदर सारे सेंटिमेंट्स इमोशंस हैं, लेकिन वो जानता है कि वो सेंटिमेंट्स इमोशंस को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर, मुझे महाराज ने पर्सनली बोला, अर्जुन मोड, द्रोणाचार्य मोड। अर्जुन लैमेंटेड, द्रोणाचार्य लैमेंटेड, बट द डिफरेंस वॉज अर्जुन रिज्यूम्ड बैक हिज सर्विस, द्रोणाचार्य डिड नॉट। और कोई प्रश्न?
All the earlier slok as well as this slok, the word Munir is being used. Munir is a highly escalated personality. As I think that is the correct definition of a Muni.
Muni is what?
Highly escalated personality. What's the message for normal persons like us? How we should take this? Because they have achieved that by their tapasya or their austerities and so many things over time and over, they have come to that stage. How should a normal person handle such situations?
See, the symptom of a muni mentioned in the previous verse and even in this verse is the basic symptoms. Muni, as you say, is a very, very highly advanced soul who has many more qualities as well. So what Krishna is speaking in the second chapter, that muni has the basic qualities what we should begin with. So how we can translate now in our life the previous verse and this verse, as you are asking, that even if a small situation, like, you know, I was discussing with our KK Vag students, you know, last week, about how our mind functions. That our mind is so fickle in Kali Yuga that sometimes you may not even know why you are feeling bad today. Hai na, achana, pata nahi aaj, sab kuch down hi lag raha hai. To ek bar mera ye anubhav hua tha. It happened once. I was not able to figure out why there is something pinching me today. क्या मेरे को बुरा लग रहा है? फिर मैं अपना उस दिन का टेप रिवाइंड किया. शाम को मेरे को ये महसूस हो रहा था, वो टेप रिवाइंड किया मैंने. तो टेप रिवाइंड किया, मेरे को किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ, किसी ने कोई झगड़ा भी नहीं किया, कोई बुरी खबर भी नहीं सुनाई, कुछ भी नहीं हुआ. फिर मुझे ध्यान में आया कि मैं जब रास्ते पे चल रहा था तो एक कुत्ता भौंक रहा था मेरे को. हाउ माइंड इज सो सेंसिटिव. एक कुत्ता भौंक रहा था और वो मेरे पे भौंक रहा था. हाँ, होता है ना, कई बार आप चल रहे हो और सबको छोड़ के आप पे कुत्ता भौंक रहा है तो थोड़ा ईगो को ठेस पहुंचती है, यार मैंने क्या किया तेरा. और सभी लोग देख रहे हैं, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, कुत्ता भौंक रहा है. मतलब सारी दुनिया कुत्ते को बेकसूर मानती है और तुम्हारे पे भौंक रहा है, मतलब तुम में चोर है कुछ. तो वो सुबह मेरे को एक कुत्ता मेरे पे भौंका. सो दैट वॉज वेंट इन टू माई सबकॉन्शियस माइंड, समथिंग बैड हैज हैपेंड. सो आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग इट ऑल द टाइम ड्यूरिंग द डे, बट इट वॉज देयर. कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो खराब, किसी ने कुछ किया. सो इट इज लाइक दैट. सो वी हैव टू बिगिन टू हेल्प आर सेल्व कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन आफ्टर हियरिंग दिस श्लोकास. कि कम से कम मुनि तो छोड़ दो, जब कुत्ता भौंकता है तो उससे तो हम प्रभावित न हो, उतना तो कर सकते हैं. सो वॉट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग, कृष्णा इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वी ऑल ऑफ अ सडन बिकम मुनि. कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग दैट यू टेक द प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्स एंड ट्रांसलेट इन योर लाइफ. इवन इफ अ डॉग बार्क्स यू एट यू, और इवन इफ जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड, ही वॉज प्रेइंग फॉर द पीपल हु क्रूसीफाइड हिम. सो वी माइट नॉट बी ऑन द पोजिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट that we pray for those people who crucify us, but at least we can begin with not feel bad even when a dog barks at us. And from that level, when we practice, then Krishna is also mentioning in the Gita, by that abhyasa we rise to the level of the escalated level, as you are saying, of muni. So slowly, it happens gradually. Any other questions? Yeah.
Just like you were answering this and sometimes rather easier to turn to Krishna when you are having some kind of pain. But there is a certain kind of a sudden negligence which seeps into you when you are in trouble. So how can you catch hold of that sudden negligence and throw it out?
By always being in association of devotees. So when you are in association of devotees who are more advanced than you, then they will help you not be negligent. They will help you always to take the right decisions. And what is the right decision? To turn to Krishna. So we have to always, you know, I give the example of the Bombay local train. The Bombay local train is such that The crowd is so much, you are surrounded by so many people that even if you don't want to get down, they will make you get down. So therefore, if you are always surrounded by devotees, even if you may not have that intense desire to turn to Krishna, the whole crowd will take you in the fold of Krishna. So therefore, it is said, Kalau Sange Shakti. In Kali Yuga, the Shakti is in Sangha. What Sangha? Satsanga. So yeah, you may know the philosophy, you may know right and wrong, whatever. But unless you are in good association, even that right choice you cannot make unless you are in good association. So always we should be surrounded by Vaishnavas, and Srila Prabhupada's mercy is such that he has given so many Vaishnavas. Wherever you go, you will find somewhere some Hare Krishna, some beadbag, some tilak, some kanti mala. If not, somebody knows something about Hare Krishna. So, thanks to Srila Prabhupada, we will be celebrating his appearance day very soon. So, it's his mercy that we have been benefited and blessed by this wonderful devotee association. Srila Prabhupada ki...